कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम हरे हरे
हरे कृष्णा। सो किसका घर है? भक्ति विनोद प्रभु जी के निवास स्थान पे जो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण वर्णन करने के लिए आप पधारे, आप सबका धन्यवाद। और भक्ति विनोद ठाकुर और परिवार का आभार प्रकट करते हैं कि अपने निवास स्थान पे कली काल में भगवान श्री कृष्ण के इस मुखारविंद से प्रवाहित अमृतमयी गंगा का गीता का रसास्वादन कराने का अवसर देते हैं। सो भगवत गीता के दूसरे अध्याय श्री प्रभुपाद ने इनका नाम दिया है कि सारे गीता का सार, अथवा गीता में जो कुछ है उसको संक्षेप में दूसरे अध्याय में दिया गया है। सामान्य रूप से इस दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग का मतलब विश्लेषण करके भगवान ने आत्मा और शरीर को अलग करके बताया है। तो यह दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है भगवद गीता। सबसे बड़ा अध्याय 18वां, वो 78 श्लोक है और ये कोई 72 श्लोक के करीब है, तो दूसरा बड़ा अध्याय है। तो दूसरा अध्याय जो है वो गीता थोड़े में, और 18वां अध्याय जो है वो गीता की फिर वापस समरी। इन दो को ध्यान में रख के ये समझना चाहिए कि जब कोई अच्छा आचार्य गुरुवर पढ़ाता है तो पहले कोई चीज़ थोड़े में बतानी चाहिए। उससे ये होगा कि प्रश्न पूछा जाएगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको समझाना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। केवल बोलने से समझ में नहीं आता है, जब प्रश्न पूछेंगे उसको समझाया जाएगा तब समझ में आएगा। तो एक अच्छे जगत गुरु, अच्छे क्या, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने एक अच्छे गुरुजन को, अध्यापक को कैसा पढ़ाना चाहिए उसके आधार पे पहले कोई चीज़ थोड़े में बतानी चाहिए, सामने के हृदय में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए ताकि पूछे, और जब वो पूछे तो उसको विस्तार से समझाना चाहिए, और जब पूरा हो जाए सब तो फिर जो कुछ अभी तक पूछा उसने और बताया उसको फिर संक्षेप में दे दिया जाए ताकि उसको घर ले जाने के लिए तैयार माल मिले। तो दूसरा अध्याय ऐसे जिज्ञासा पैदा करने के लिए है। और 18वां अध्याय सारी एक अच्छे जगत गुरु, इस जगत गुरु भगवान ने अच्छे अध्यापक की शिक्षा का शैली सिखाई। भगवान ने ऐसे उंगली का इशारा करके जब कह दिया कि देखो ये तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं, अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया और कहा अब नहीं लड़ाई करूंगा, तो अर्जुन को मोह में श्री कृष्ण ने डाला। उससे पहले अर्जुन कहता मैं लड़ने के लिए आया हूं, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो कथा हाथ धनुष उठा लिया है, लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे उसको उंगली का इशारा किया कि ये देखो तुम्हारे अपने दादा मामा नाना सब खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, और अर्जुन के हृदय में भगवान ने मोह को स्थापित कर दिया। वो अर्जुन का फिर भगवान के दो श्लोक है, वो मित्र के नाते हैं। भगवान दो श्लोक दूसरे अध्याय में तीसरा और चौथा मित्र के नाले बोलते हैं, दूसरा और तीसरा श्लोक कि अर्जुन तुम देखो हम एक आर्य हो, ऐसी बातें इस युद्ध भूमि में शंख बजने के बाद तुम्हें शोभा देती है, ये तो अकीर्ति वाली है, इसमें कोई डांटते हुए कहा कि तुम गुरु के पद के ऊपर खड़े होके भगवान ने कह दिया कि बातें तो बड़े पंडित जैसी करते हो, लेकिन मरते हो तो रोते हो शरीरों के लिए, आत्मा का तो तुम्हारे को ज्ञान ही नहीं है। डूबते हुए व्यक्ति का कोट बचाने का प्रयास कर रहे हो और आदमी डूब रहा है, तुम्हें आदमी की चिंता नहीं है, तुम्हारा सारा प्रवचन कोट बचाने का है, तो तुम्हारे सारे प्रवचन शरीर के ऊपर है। और तब भगवान ने असल में उपदेश शुरू कर फलदाता जीव नहीं है, कर्म का फल देने वाला भगवान है। और भगवान जब आते हैं तो भगवान का अवतार होता है, तो शरीरों का जन्म मृत्यु होता है, आत्मा का आवागमन होता है। 30वें तक भगवान आत्मा का ज्ञान देके 31वें से फिर 39वें तक शरीर का धर्म बताएंगे। इसलिए ये इस गीता के भाग को कहना चाहिए दो प्रकार के हमारे स्वधर्म हैं, और तीसरा है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है और पुराण है। इसमें क्या आत्मा के गुण है उनका वर्णन किया हुआ है। और ये वो उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। ये नित्य है, ये अजन्मा है और ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये आत्मा के गुणों का वर्णन है और प्रभुपाद जी लिखते हैं
गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुवंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी तथा कूटस्थ कहा जाता है। शरीर के 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं।
एक मिनट, क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज का भगवान बना हुआ है उसी मसाले की आत्मा बनी हुई है, लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण है, आत्मा उसका अंश है। कूटस्थ का अर्थ ये होता है, आपने सुनार के पास देखा एक नीचे लोहे का एरन होता है, उसके ऊपर कितने सारे तारे बना के और आभूषण बनाता है, लेकिन वो एरन वैसे का वैसे रहता है। ऐसे कूट अस्त माने जिसके ऊपर कूटा जाए, और जो कूटा जाए वो बदल जाए, लेकिन जो वो नीचे है वो वैसे ही रहे। तो भगवान को भी कूटस्थ कहते हैं और जीवात्मा को भी कूटस्थ कहते हैं। इसका मतलब इस जीव मिट्टी का वो भी उसमें भी आता है, गाड़ी लेते हैं उसमें भी आता है, जो भी भौतिक चीजें हैं उसमें 6 परिवर्तन आएगा। जो भी भौतिक चीज लोगे, चाहे लकड़ी की बेड टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शरीर हो, उसमें परिवर्तन आता रहेगा और एक दिन वो झुरेगी, बुरेगी, टूटेगी, समाप्त होगी। लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं आता है। हाँ जी, आगे क्या है?
किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, आत्मा अजन्मा है।
होता है शरीर अपमान भी दिलाता है, पीड़ा भी दिलाता है, भयभीत भी रहता है। ये शरीर सीधा इस सारे चीजों के पीछे एक ही चीज सीखनी है, जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये शरीरों वाला जब तक सिलसिला चलता रहेगा, सिलसिला का मतलब ये धारा चलती रहेगी, तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। तो ये कब निश्चय हम करेंगे कि हमको वापस शरीर में नहीं आना है, उस दिन समझ लो कि हमारी ऐसे हम इस बच्चे की तरह कहते नहीं, हमारी मर्जी, हम इस दुनिया में सुख भोगने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते जाके करो, लेकिन तुम सुखी हो नहीं सकते हो, क्योंकि जो सुख यहां है वो बाहर है ही नहीं। तो असल में एक बात पहले कैसे हमको ये समझ में आए कि जब तक ये भौतिक शरीर आत्मा को धारण करने पड़ते हैं, तब तक उसको जन्म मृत्यु अपमान के बगैर भी काम चल रहा है, फिर भी हम समझे नहीं नहीं हम सदा रह जाएंगे, काम हमारा चलता रहेगा ऐसा। तो निर्णय ये कर लेना है कि शरीर, ये शरीर किसके आधार पे बदलते हैं? असल में शरीर तो जहां यहीं पड़ा होता है, वो क्या चीज है जिस जो आत्मा का बंधन है उससे मुक्त होना है? मन बुद्धि अहंकार और चौथी चीज है दूषित चित्त, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। 4 चीजों का सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि से कहीं भी फेंको वापस धरती पे आके गिरेगा, कितना भी ऊपर ले जाओ लेकिन आएगा वापस धरती पे, क्योंकि जो जिसका अंश है वहीं आएगा। आप कहीं भी आग जलाओ उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है, उसको ऊपर ही जाना है। पानी कहीं भी गिराओ समुद्र में जाएगा, क्योंकि उसी का अंश है। ऐसे आत्मा भगवान का अंश है, उधर ही जाएगा तब सुखी होगा। जो जिसका अंश होता है उसको वहीं जाने से सुखी होती, सुख मिलता है। और शरीर जो है प्रकृति का अंश है, इसलिए शरीर दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि शरीर दिया प्रकृति ने, तो शरीर प्रकृति वो कहां गया, वो कहां सच ढूंढ ले। तो जो आत्मा का समय है उसकी तरफ हमारा झुकाव कम है, क्योंकि प्रभाव शरीर का इतना भारी है। असल में इतना सारा शरीर चलता है एक आत्मा के सहारे, लेकिन प्रभाव आत्मा का शरीर का हमारे ऊपर ज्यादा, आत्मा का इतना प्रभाव नहीं है, शरीर का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हमारे को जीवन में संतुलन लाना चाहिए। जैसे शरीर का भोजन 3 टाइम खाना जरूरी होता है ना, ऐसे आत्मा का भी खोराक है, आत्मा का भी भोजन है, वो भी 3 टाइम है। उसको बोलते हैं त्रिकाल संध्या। हमारे पूर्वज हमेशा संध्या वंदन करते थे, सुबह उठ के नहा धो के संध्या करते थे, सायंकाल की संध्या करते थे। ये अगरपति घर में संध्या वंदन का नियम होता था पहले। ये आत्मा के भोजन का समय है रोज का। तो जैसे शरीर को भोजन चाहिए, ऐसे आत्मा का जब तक हम कोई भोजन का प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक शरीर की सुविधाओं से आत्मा को सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा ही नहीं। आप अगर अपने जीवन में 20 साल पीछे देखें तो आपके हो सकता है कि जहां आपका जन्म हुआ वहां इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहां शांति ज्यादा थी, प्रेम ज्यादा था। और अब हमारे पास सुविधाएं ज्यादा है लेकिन प्रेम और शांति कम है। आप देख लीजिए, बहुत बड़ा जीवन में आपको अंतर नजर आएगा, क्योंकि उस वक्त में इतनी भौतिकता के पीछे भाग दौड़ नहीं थी, तो ज्यादा हुआ करता था। अब भौतिकता का महत्व है और संबंधों का महत्व है कि घर में रहने वाले आदमी की कीमत ज्यादा है। घर महंगा है और आदमी सस्ता है। जमीन महंगी है या किसान महंगा है? जमीन महंगी है। और होना किसको महंगा चाहिए? किसान को। जमीन क्या करेगी बगैर किसान के? घर क्या करेगा बगैर आदमी के? ऐसे ही हमने आत्मा की वैल्यू को कम कर दिया और शरीर की वैल्यू को बढ़ा दिया। और जो बना हुआ है सारा शरीर, उसका मसाला निकाल के और तोल के मार्केट में देखो तो 500 रुपये का भी मसाला नहीं है इसका। पानी इसमें है जो 50 लीटर पानी होगा, 60 लीटर, और बाकी दो माचिस की डिबिया बने, इतना फास्फोरस है, और नमक एक बार सब्जी में डाले इतना नमक निकलेगा, और एक कील लगाओ इतना लोहा निकलेगा, सब मसाला इतना ही अंदर। 500 रुपये का सारा मसाला है। उसके लिए 50 साल जिंदगी के पागलों की तरह चलते हैं, और जो जिसके आधार आत्मा के वो टिका हुआ है, इसका किसी को ध्यान ही नहीं। ये हमारी बुद्धि में जो फेर आ गया है कि घर महंगा है और आदमी सस्ता है, किसान सस्ता है और जमीन महंगी है। होना चाहिए किसान महंगा, महत्व किसान का होना चाहिए, उसके बगैर जमीन से अन्न कौन पैदा करेगा? घर में रहने वाला नहीं है भाई, किसी घर में आदमी नहीं रहता, कोई जाता है उधर आदमी से के लिए जाते हैं कि घर के लिए जाते हैं? आदमी के पास जाते हैं, घर के पास नहीं जाते। ऐसे हमको आत्मा के महत्व को ज्यादा देना चाहिए और शरीर को चलाना है, क्योंकि ये शरीर यही छूट जाए, घर छूट जाएगा, लेकिन मालिक अभी एक मालिक आज इस घर में रह रहा है, कल ये भक्ति में दूसरा बंगला कोई ले तो आपको यहां कोई नहीं आएगा, वो तो उस बंगले में चले जाएंगे। तो ये जब दूसरा शरीर लेगा तो उधर दूसरे आदमी आ जाएंगे, ये इस शरीर को तो कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये जो एक हमारी गलती है, हमारी जो इक्वेशन में गलती हो गई है, वो ये हो गया है कि हमने भौतिकता को महत्व ज्यादा दिया है और आध्यात्मिकता को हमने बहुत इग्नोर कर दिया है, उसको हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और इसका परिणाम ये निकला है कि बच्चों में चरित्र नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है चरित्र की, न स्कूल में है, न घर में है, न कॉलेज में, कहीं भी समाज के अंदर आपको आज चरित्र नहीं दिखाई देगा। जो हमारी मूल्य थे, मान्यताएं थे, वो सब खत्म हो गई। बड़ों का आदर था, वो सब समाप्त हो गया। और उसका एक ही कारण है कि आध्यात्मिक की तरफ हमारा बिल्कुल जराए बराबर भी समाज में ध्यान नहीं है। और कथा कीर्तन में जाते हैं, दिखावे का बहुत करते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। कृष्ण भावना अमृत संघ में और अन्य सारी धार्मिक संस्थाओं में अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां आपको आत्मा के लिए रोज 5 घंटा 4 घंटा निकालना है, यह कमिटमेंट है, और कहीं यह कमिटमेंट नहीं है। और कहीं भी ये किसी के ऊपर लाजमी नहीं है कि तुमको ये करना है, इसलिए वहां कोई परिवर्तन नहीं। और यहां निश्चित रूप से आपको आत्मा के लिए ये काम करना है। कमिटमेंट जो है वो कृष्ण भावना में विशेषता ये है कि कमिटमेंट है कि मुझे इतना करना है। जैसे आप बिजनेस में कमिटमेंट करते हैं, मुझे इतना चाहिए, मैं भाई नौकरी में कमिटमेंट करते हैं, भाई इतना मेरे से काम करूंगा, इतना पैसा है, ऐसे स्पिरिचुअली कमिटमेंट करनी है हमको। जैसे प्रभुपाद ने कहा 16 माला जपनी है, ये कमिटमेंट है तुम्हारी, ये आत्मा का भोजन है, ये तुम नहीं खाओगे तो तुम कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकते, इतना तो इसको देना ही है रोज का, भाई इसके बगैर ये चलेगा नहीं। कहते हैं ये चल नहीं रहा है, एक जीवी था मर गया तो ये चल नहीं रहा है, एक दिन में नहीं चल रहा है, ये ऐसे हम नहीं चल पाएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे। तो ये दोनों के अंदर अंतर क्या है इसको देखना चाहिए, इसको पूरा पढ़ के पूरा करो।
वैश नित्य शाश्वत ना सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि के इतिहास सोचते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष पर पुरुष भी अपने में बाल्य काल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, वह भी विशिष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वह किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती है।
उपसृष्टि का मतलब आत्मा से दूसरी आत्माएं पैदा नहीं होती, आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा नहीं होती, लेकिन शरीर से दूसरे शरीर पैदा होते हैं, उसमें दूसरी आत्मा प्रवेश करती है। और ऐसे नहीं है कि सभी आत्मा है, आत्मा एक ही केवल उतरती है तो कोई बालक जन्म लेता, नहीं तो कुछ भी नहीं है, बेकार हो गया सब कुछ। तो आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा नहीं होती, लेकिन शरीर पैदा होते हैं जब उसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करती है।
शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है ना इसमें कोई परिवर्तन होता है, अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है।
जैसे सर बच्चा पैदा होता है, आत्मा है तो बढ़ता है, बड़ा होता है, आत्मा नहीं है तो बढ़ नहीं सकता है, लेकिन आत्मा अंदर होने से आत्मा नहीं बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, आत्मा उतना है उतना ही रहता है। आत्मा की जो नाप है उसमें कोई बड़ाई और छोटाई नहीं होती, वो जितनी है उतनी रहती है, वो अणु है अणु ही रहती है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली है, जैसे आइटम बम की इतनी शक्ति है, ये तो छोटा लेकिन पूरा विश्व को नाश कर सकता है, ऐसे आत्मा है अणु लेकिन बड़े से बड़े शरीर को भी चला सकती है, लेकिन वो निकल जाए तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। ऐसे आत्मा ऐसी है कि खुद नहीं चलती है लेकिन सबको चला रही है। बैटरी होती है कार के अंदर, बैटरी नहीं चल सकती है लेकिन बैटरी नहीं होगी तो कार नहीं चलेगी, बैटरी नहीं चल सकती है लेकिन कार बगैर बैटरी के नहीं चलेगी, ऐसे है आत्मा नहीं चलती है लेकिन शरीर बगैर आत्मा के नहीं चलेगा, वो जब अंदर जाएगी तभी शरीर चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, वो करंट जब बिजली का आएगा तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, तो होगी नहीं, बिजली बैटरी नहीं चल सकती है, खुद अपने आप नहीं चलती, आत्मा भी अपने आप नहीं, कोई देव ने तो उसको बिठाता है तभी कहीं आती, ले जाता है यमदूत ले जाते हैं तब जाती है, अपने आप नहीं जाती है ना आती, आत्मा आती भी अपने आप नहीं है और जाती भी अपने आप नहीं है, वहां से देव नेत्रेण किसी पुरुष के रेताणु में बिठाते हैं और माँ के गर्भ में जाती है तब बढ़ती है सब कुछ, और जब जाना होता है तो या विष्णु दूत ले जाएंगे या यम दूत ले जाएंगे, अपने आप ना आती है ना जाती है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगी तब तक और कोई चल नहीं सकता, उसके आने से सब होता है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होता।
न जायते मृत्येवा
विपश्चन नायम नायम कुतश्चन न भूत्वा कश्चन अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो नान्यते हनिमा। एक ही श्लोक है, सिर्फ एक शब्द विपश्चित जो है वो बदला हुआ है। विपश्चित कहते हैं बुद्धिमान को, केवल बुद्धिमान आदमी ही आत्मा के बारे में सोच सकता है, मूर्खों की बस की बात नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं विचित्रित है, विपश्चित जो है एक शब्द महत्वपूर्ण है, पढ़िए।
आत्मज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है।
अब ये दूसरा एक प्रसंग है पूरी दुनिया के अंदर कि हमारे अंदर जो चेतना है वो कहाँ से आती है, बोले चेतना आत्मा से आती है, और इसके ऊपर अब खोज कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस, चेतना को कहते हैं कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और एमएस कर रहे हैं हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ से भक्ति विधान इंस्टीट्यूट वाले, भाई आखिर ये चेतना कहां से आती है? आत्मा अगर शरीर में नहीं है तो चेतना नहीं है, तो ये चेतना कहां से आती है? चेतना तो चेतना जीव आत्मा की पहचान है। आत्मा को नहीं देख सकते लेकिन चेतना को देख सकते हैं, जैसे दर्द को नहीं देख सकते हैं लेकिन पीड़ा का पता तो लग सकता है, अनुभव कर सकते हैं। भाई आत्मा कहां है, दिखाओ मेरे को आत्मा, नहीं दिखा सकते। भाई आदमी ने कहा नहीं है आत्मा, कहां है दिखाओ तुम्हारे अंदर ये शरीर, शरीर उसने उसको थप्पड़ मारा, बोला ये क्या दर्द हो रहा है किस, दिखा दर्द कहां है तुम्हारा, दर्द दर्द दिखाया नहीं जा सकता लेकिन दर्द होता है। ऐसे आत्मा का चेतना का पता लगता है लेकिन चेतना आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन चेतना से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मा की पहचान है चेतना। हरे कृष्ण।
कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ पाते हैं कि सूर्य आकाश में ही है। इसी प्रकार क्योंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुषों के या कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं।
उदाहरण क्या दिया है कि सूर्य है, दिखता नहीं है, बादल है, फिर भी कहते हैं सूर्य है। अब देख नहीं रहे हैं फिर भी मान रहे हैं कि नहीं, कि अभी दिन है कैसे मानते हैं? सूरज तो दिखता नहीं, सारा दिन बादल पड़े थे, फिर भी दिन कैसे मांगते हैं? भाई ऊपर सूर्य है तब थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है। तो ऐसे मैं आत्मा है, उसकी चेतना आ रही है, आत्मा नहीं दिख रही है लेकिन चेतना आ रही है। फिर उदाहरण दे रहे हैं, आगे आएगा तीसरे अध्याय में, चेतना कैसे ढकी होती है हमारी, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, धुआं होता है तो आग नहीं दिखती है। जैसे शीशा है उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है तो अपनी शक्ल नहीं देखते हैं। जैसे बच्चा गर्भ में है तो ऊपर सब इतने पर्दे चढ़े हुए, अंदर कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कुछ पता नहीं लगता है। तो ये ऐसे चेतना, पेड़ की चेतना ऐसी होती है जैसे बच्चा गर्भ में, पता नहीं है बढ़ रहा है, बच्ची है, बच्चा है, तो चेतना वो ढकी हुई है। पशु पक्षियों की चेतना ऐसी है जैसे मिट्टी लगी हुई है शीशे के ऊपर। मानव की चेतना ऐसी है जैसे अग्नि के ऊपर धुआं है, थोड़ा सा हवा दोगे तो दिखाई दे देगी। तो हम मानव शरीर में चेतना का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो अन्य जोनियों में चेतना ढकी हुई है। जैसे सूरज बादलों से ढका हुआ है, ऐसे चेतना शरीरों से ढकी हुई है, और इसलिए शरीर के अंदर थोड़ा सा उसका आभास होता है, लेकिन वो बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं, सब नहीं जान सकते। और मानव शरीर में इस चेतना का अनुभव किया जा सकता है, पशु तो कभी नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं। हरे कृष्ण।
हिंदू जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है।
अब दूसरी बात क्या कह दी, कि जैसे जीवात्मा की चेतना है ऐसे भगवान की भी चेतना है, लेकिन भगवान की चेतना हमारे जैसी नहीं, क्योंकि हमारा शरीर बदलता है इसलिए हमको सब कुछ भूल जाता है, और क्योंकि भगवान का शरीर कभी नहीं बदलता है इसलिए उनको कुछ नहीं भूलता है। तो भूलने का कारण, चेतना के लुप्त होने का कारण है शरीरों का परिवर्तन, और भगवान का शरीर सदा एक जैसा रहता है इसलिए उसमें कोई चेतना का लुप्त होती ही नहीं है, और सारी चेतना उससे आती है, वो सर्वत्र। इसलिए एक दूसरा उदाहरण भगवद गीता के 13वें अध्याय में आया गया, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। मैं मेरे शरीर के बारे में जानता हूं, आप आपके शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान सबके शरीरों के बारे में जानते हैं, क्योंकि सबके शरीर में परमात्मा के रूप में बैठे, सबके शरीर में परमात्मा के रूप में बैठे। यह आसानी से ऐसे समझ में आएगा, हर किसान अपने खेत को जानता है या हर मालिक अपने घर को जानता है, लेकिन गवर्नमेंट सब जमीनों का उसके पास नाप है, कौन सी किसकी है, कौन सा घर किसका है, कहां रजिस्ट्री है, गवर्नमेंट के पास सबकी रजिस्ट्री है। आपके पास सबकी रजिस्ट्री है, आपके पास अपनी है लेकिन गवर्नमेंट के पास सबकी है। ऐसे भगवान है गवर्नमेंट, वो सबके बारे में जानता है, लेकिन हम हैं सिर्फ अपने घर के मालिक, घर के बारे में जानते हैं। तो आत्मा सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन परमात्मा की चेतना सर्वव्यापक है इसलिए सब कुछ जानती है। और भगवान की चेतना लुप्त क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर बदलता ही नहीं है, और हमारी क्यों बदलती, चेतना हमारी लुप्त होती है क्योंकि शरीर बदलता है। तो हमारा भूलना, हमारी चेतना का लुप्त होना हमारे शरीर के परिवर्तन के कारण होता है। हाँ,
जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिया गया भगवद गीता का उपदेश व्यर्थ था। आत्मा के दो प्रकार है, एक अणुआत्मा दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इस प्रकार पुष्टि हुई है, अरोहण ज्ञान मन महतो नियनात् आत्मसस्य जंतो निर्मितो गोहायम कमकृतो पश्यति वीत शोको धातु रसादन रसादना महिमानात्मना। परमाणु परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उत्तम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रभुत किए जाने की आवश्यकता है।
अब यहाँ आखिरी में ये बताया कि एक तो अणु आत्मा है, एक विभू आत्मा है। अणु का मतलब छोटा, विभू का मतलब बड़ा। जो बड़ा होता है उसको परमात्मा कहते हैं, छोटा है उसको आत्मा कहते हैं। और फिर आगे बताया गया कि ये दोनों एक ही शरीर में ऐसे बैठे हैं जैसे दो पक्षी एक शरीर में बैठे हुए हैं, लेकिन एक जो जीव आत्मा है वो शरीर के कर्मों का फल का भोगता है और कर्म करता है। भगवान न करता है न भोगता है, वो केवल साक्षी है। एक पेड़ के दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खाता है तो मीठा भी लगता है खट्टा भी लगता है, और एक केवल देख रहा है साक्षी। तो परमात्मा साक्षी है और भगवान और जीव आत्मा भोगता है। इसलिए जब जीव आत्मा परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेगा तब अपने असली स्वरूप को जानेगा कि मैं भगवान का सेवक हूं जो अब भूल गया है। इसलिए यहां उदाहरण यह दिया गया, अगर कृष्ण भी हमारे जैसे जीव होते तो उनकी गीता की शिक्षा का महत्व ही क्या है, जरूरत क्या है हम रात को बैठ के 10 बजे उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ें जब वो हमारे जैसा है। और दूसरा है कि भगवान विभु है, बड़ा है, वो गुरु के स्थान पे है, और अर्जुन भूल गया है क्योंकि वो जीव है, इसलिए भगवान उसको पुनः दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे हम भी अपनी पहचान को भूल जाते हैं, भगवान या भगवान का कोई प्यारा प्रतिनिधि हमको भगवान की शिक्षाओं को देता है, तब हम वापस भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो यहाँ सिद्धांत सारा अभी तक ये सब श्लोक ऐसे ही चलेंगे। शरीर को अलग करके बताया जाएगा, आत्मा को अलग करके बताया जाएगा, और आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है और आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है ये समझाया जाएगा। और निश्चित रूप से शरीर हमारे को मिला है तो इसका सदुपयोग करना है, किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। और हम किसके लिए कर रहे हैं? संसार के अंदर सदा रहने के लिए, जो हो नहीं सकता है। बस झगड़ा सिर्फ ये। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?
थक गए। जैसे आपने चेतना और आत्मा के बारे में बताया, इसी तरह जैसे चेतना आपने बताया कि भूमि में हल्का सा करके हमारे
ये तीसरे अध्याय में आएगा,
तो
अज्ञान सब सबका ज्ञान,
सिर्फ जीव जो है वो चेतना जिसकी कॉन्शियसनेस जितनी ऊपर भगवान की तरफ जा रही है उतना शुद्धता की तरफ प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही देख सकते हैं जानवरों में चेतना नहीं होती क्योंकि जानवर अपलिफ्ट नहीं कर सकते, यही कारण है।
चेतना उनमें है लेकिन वो चेतना विकसित नहीं है, विकसित नहीं है जिसमें वो भगवान का अनुभव कर सके, ये संभव नहीं है। असल में हम क्या कर सकते हैं जो पशु नहीं कर सकते हैं? हम कर्म को बदल सकते हैं जो हमारा अनादिकाल से चलता आ रहा है, पशु कर्म को बदल नहीं सकता है। पशु योनी को बोलते हैं भोग योनी, जो उसने अच्छा किया है उसका अच्छा भोगेगा, बुरा किया है उसका बुरा भोगेगा। नया कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली प्रमोशन होता रहेगा। वो गाय बनेगा और गाय के बाद मानव बनेगा, वो शेर बनेगा और शेर के बाद रजोगुणी मानव बनेगा, वो वानर बनेगा और तमोगुरुष मानव, इन तीन जुनियों के बाद वो मानव बनेगा या वापस स्वर्ग से आगे मानव बनेगा। लेकिन मानव है वो परिवर्तन अपने यहां से करके, चाहे तो भगवत धाम चला जाए, चाहे तो स्वर्ग चला जाए, चाहे तो वापस मानव बन जाए, और चाहे तो अपना पतन करके फिर 84 लाख की जोड़ियों में कहीं भी चला जाए। ये पशुओं को अधिकार नहीं है, ये सिर्फ मानव को है। इसलिए मानव को की चेतना में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अपने कर्मों को परिवर्तन कर सकता है। तो कर्म करने का अधिकार सिर्फ मानव को है, पशु को नहीं है। और केवल भारतवर्ष में कर्म करने की भूमि भारतवर्ष है, और कोई लोक भी कर्म का नहीं है। स्वर्ग में कर्म नहीं कर सकते, भोग कर सकते हैं सिर्फ, और किसी लोक में भी कर्म नहीं है, और किसी जोनी में भी कर्म नहीं कर सकते। केवल मानव जोनी और भारतवर्ष में कर्म होता है, और कर्म का परिवर्तन करने से भगवान की प्राप्ति करना संभव है। चाहे हमारी इच्छा है, हम कहां जाना चाहें उसके लिए प्रयास करें तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कहीं ये संभव नहीं। इसलिए महाप्रभु चैतन्य ने कहा, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म मार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अगर भाग्य से मानव जन्म मिला है, वो भी भारत में मिला है, तो जन्म को सार्थक करो। पहले आत्मा का अनुभव कर लो, भगवान से संबंध स्थापित कर लो, और फिर दूसरों का भला करो। हरे कृष्ण, धन्यवाद।